आज है 27 जून दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू। ड्रोन और सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर।
कोशिश की जा रही है कि फुल प्रूफ सिस्टम रहे, फुल प्रूफ मैकेनिज्म रहे, किसी तरीके से भी कोई कोताही नहीं रहे।
झारखंड में अगवा किए गए 3 पुलिस वाले अब तक लापता। पत्थलगड़ी आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच तनाव जारी। रिचप तैयब अर्दोगान ने तुर्की पर पकड़ मजबूत की, पर वो चाहते क्या हैं?
वो चाहते हैं कि जो तुर्की के कल्चरल रूट्स हैं, इस्लामी रूट्स हैं, उससे तुर्की को दूर नहीं होना चाहिए।
विस्तार से सुनेंगे दुनिया जहान में, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। भारत प्रशासित कश्मीर में भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच हिंदू शरणार्थियों का पहला जत्था आज अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों का कहना है कि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक चिप लगे वाहनों का प्रयोग किया जाएगा और उनकी निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। यात्रा मार्ग की निगरानी सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से की जाएगी। भारत प्रशासित कश्मीर में पिछले सप्ताह राज्यपाल शासन लगाया गया था और वहां लगातार हिंसक घटनाएं हो रही हैं। पिछले साल हुए एक चरमपंथी हमले में 6 हिंदू श्रद्धालु मारे गए थे। कई दिनों से भूमध्य सागर में 200 से अधिक प्रवासियों को लेकर फंसे जहाज को माल्टा ने अपने बंदरगाह पर आने का प्रस्ताव दिया है। प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट ने कहा है कि वो मानवीय संकट को रोकने के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूरोपीय समूह के देश लाइफलाइन नामक जहाज पर सवार प्रवासियों को शरण देने के लिए राजी हुए हैं। मस्कट ने जहाज पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी जाँच की जाएगी। जहाज को चलाने वाली एक जर्मन स्वयंसेवी संस्था ने किसी भी आरोप से इनकार किया है। वहीं माल्टा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनके आगे कोई मजबूरी नहीं है।
Despite having no legal obligation or responsibility in the matter, the Maltese government took the lead to seek
माल्टा सरकार के आगे कोई कानूनी दायित्व या जिम्मेदारी ना होने के बावजूद हमने समाधान खोजने की पहल की है ताकि इसको लेकर कोई मानवीय संकट ना खड़ा हो जाए। एमवी लाइफलाइन को माल्टा बंदरगाह पर आने की अनुमति दे दी गई है, जहां पर पहचान आदि की प्रक्रियाएं होंगी और दूसरे सदस्य देशों को लोगों को सौंपा जाएगा। ये थे माल्टा के प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट के शब्द। दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति सल्वा कीर और विद्रोही नेता रिएक माचार ने 5 साल के गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत 72 घंटों के अंदर संघर्ष विराम लागू होगा। दक्षिणी सूडान में संघर्ष के कारण 10,000 लोग मारे गए हैं और तकरीबन 40,00,000 लोग विस्थापित हुए हैं। लड़ाई रोकने के लिए हुई पिछली कोशिशें नाकाम हुई हैं। रिपोर्टों का कहना है कि ताज़ा समझौते से कुछ राजनीतिक कैदी रिहा किए जाएंगे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम ने इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक को पार कर रामल्ला में फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की है। शिक्षा और राहत कार्य में ब्रिटेन के काम को उन्होंने दोहराया और क्षेत्र में शांति को लेकर उम्मीद जताई। वहीं राष्ट्रपति अब्बास ने इसराइल के साथ शांति प्रक्रिया के अपने वादे को दोहराया है। मंगलवार को प्रिंस विलियम ने यरूशलम में इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी। वो शाही परिवार के पहले शख्स हैं जिन्होंने इसराइल और फलस्तीनी क्षेत्रों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा,
I'm very much looking forward to meeting some Palestinians today and seeing some of the culture and the
मैं कुछ फलस्तीनियों के साथ आज मुलाकात की उम्मीद कर रहा हूं और फलस्तीनियों की जीवन शैली की विविधता और संस्कृति को देख रहा हूं। मेरा स्वागत करने के लिए शुक्रिया। मैं खुश हूं कि हमारे देश मिलकर काम कर रहे हैं और राहत कार्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कई कामयाबी वाली कहानियां हैं। क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए उम्मीदें आपकी ही तरह मेरी भी हैं। ये थे ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम के शब्द। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बॉल्टन के साथ हुई उनकी बातचीत ने दोनों देशों के बीच संबंध पूरी तरह बहाल करने की दिशा में उम्मीद बांधी है। मुलाकात से पहले पुतिन ने बॉल्टन से कहा कि संबंध वर्तमान में बहुत अच्छी सूरत में नहीं है। पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्तों की खराब हालत अमरीका में भयंकर राजनीतिक टकरावों का परिणाम है। दक्षिण पश्चिम सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र पर सरकार और उसके रूसी सहयोगी की आधी रात को किए गए हवाई हमले में 3 अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है। ब्रिटेन स्थित मानवाधिकार संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि अस्पताल दारा प्रांत के 3 शहरों में थे जो अब काम नहीं कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। भारत प्रशासित कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था तीर्थ यात्रा पर निकल चुका है। इस बार इस यात्रा पर खास तौर पर इसलिए ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि कुछ ही समय पहले जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार गिर गई और राज्य के शासन की बागडोर राज्यपाल एनएन वोरा के हाथ में आ गई। तीर्थयात्रियों को सुरक्षा मुहैया करवाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी में हिंसा और तनाव काफी बढ़ चुका है। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम के बेस कैंप से कल सुबह अमरनाथ गुफा की तरफ यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा। अभी तक अमरनाथ जाने वाले 2,00,000 यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है जो अमरनाथ गुफा का दर्शन करेंगे। बीते वर्षों में ऐसा पहली बार है जब अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के इतने सख्त कदम उठाए गए हों। प्रशासन का कहना है कि किसी भी खतरे से निपटने के लिए जगह जगह सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और हर गतिविधि पर गहरी नजर रखने के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर और यात्रा ऑफिसर मोहम्मद यूनुस मलिक ने BBC को बताया।
सिक्योरिटी के भी पूरे इंतजाम जो हमारी पहलगाम के एक्सेस के जवाहर टनल से होली के तक जो रहते हैं उसमें पूरे इंतजाम हैं। तो वो यात्रा के हवाले से जो रूट के अरेंजमेंट, दूसरा जो एसेंशियल कमोडिटीज है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बिजली का, पानी का, जो इन कैंप में भी और अंदर उठती, तो सारे इंतजाम हमारी तरफ से पूछे चाहिए एज पर एक्शन प्लान जो पहले ही डिवाइडेड रहता है, तो उसमें हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो कोशिश की जा रही है कि फुल प्रूफ सिस्टम रहे, फुल प्रूफ मैकेनिज्म रहे, किसी तरीके से भी कोई कोताही नहीं रहे। तो आई कैन टेल यू कि एवरीथिंग इज इन प्लेस। उसके बारे में जहाँ जहाँ पे हैं डिफरेंट लोकेशन में हैं, तो जहाँ जहाँ पे वो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं जो वल्नरेबल स्पॉट्स हैं, तो वहाँ पे लगे हुए हैं।
वहीं सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि गुफा के आसपास वाले इलाकों में ड्रोन लगाए गए हैं। पहलगाम में तैनात CRPF के नोडल ऑफिसर आशु शुक्ला ने मीडिया को बताया। यात्रा को सुखम और शांति से चलाने के लिए CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के करीब 40,000 जवान जम्मू से अमरनाथ गुफा तक तैनात किए गए हैं। कश्मीर में बीते 3 वर्षों से अशांत हालात के बीच अमरनाथ यात्रा का आयोजन होता रहा है। गौरतलब है कि हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर में PDP और BJP की गठबंधन सरकार गिर गई है, जिसके बाद यात्रा की पूरी जिम्मेदारी राज्य के राज्यपाल एलएन वोहरा पर आ गई है। जम्मू कश्मीर में इस समय राज्यपाल शासन लागू है। भारत सरकार ने बीते रमजान महीने के लिए कश्मीर में एक तरफा सीज फायर की घोषणा की थी, जिस दौरान चरमपंथियों ने सुरक्षा बलों पर अपने हमले तेज किए थे। बीते साल अनंतनाग में चरमपंथियों ने यात्रियों की एक बस पर हमला किया था, जिसमें 8 यात्रियों की मौत हो गई थी और 1 दर्जन से भी ज्यादा घायल हो गए थे। चरमपंथ का केंद्र दक्षिणी कश्मीर से गुजरकर ही अमरनाथ जाने वाले यात्री गुफा पहुंच जाते हैं। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
और कश्मीर के बाद चलिए झारखंड चलते हैं। झारखंड के खूंटी में पत्थलगड़ी आंदोलन कर रहे आदिवासियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पों के बाद तनाव जारी है। पुलिस के 3 जवानों के अपहरण को 24 घंटे से ज्यादा होने जा रहे हैं, पर उन्हें मुक्त नहीं करवाया जा सकता है, अभी तक नहीं करवाया गया है। ये जवान खूंटी के सांसद कड़िया मुंडा के घर पर तैनात थे। इस बीच लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले की कार्रवाई से एक आदिवासी की मृत्यु की भी खबर है। रांची से नीरज सिन्हा की रिपोर्ट, जो शुरू होती है पुलिस के ऐलान से।
ये आवाज झारखंड पुलिस के एक जवान की है। स्थानीय मुंडारी भाषा में वो अपील कर रहे हैं कि गांव के आदिवासी पारंपरिक हथियार छोड़कर पुलिस से बात करने आगे आएं। दरअसल कल शाम से ही पुलिस ने घाघरा गांव की घेराबंदी कर रखी थी और दूसरी तरफ आदिवासी भी एकजुट थे। गतिरोध बढ़ता देख पुलिस ने इस तरीके से पेशकश की, लेकिन ग्रामीणों पर इसका असर नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया तथा आंसू गैस के गोले छोड़े। इस कार्रवाई से मची भगदड़ में एक ग्रामीण की मौत हो गई है। दिन भर पुलिस गांव के घरों की तलाशी लेती रही और इस दौरान 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। 5 घंटे की कार्रवाई के बाद भी अगवा किए गए जवानों का अब तक कोई पता नहीं चला है। इस बारे में बता रहे हैं झारखंड के अपर पुलिस महानिदेशक।
अभी तक जवानों को मुक्त नहीं कराया जा सका है। अभी जो हमारा जिला प्रशासन है, पुलिस है खूंटी में, और वरीय पदाधिकारी DIG वहाँ काम कर रहे हैं। उन्होंने गांव का सर्च प्रारंभ किया है, गांव को सर्च किया जा रहा है और धीरे धीरे हम लोग अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। और उम्मीद है कि कहीं न कहीं हम लोगों को मुक्त करा पाएंगे। ये इसी भरोसे के साथ कार्रवाई आगे हो रही है।
गौरतलब है कि मंगलवार को कई गांवों के आदिवासी पत्थलगड़ी के एक कार्यक्रम में शामिल होने घाघरा पहुंचे थे, तब पुलिस ने उन्हें पहले लौटने को कहा, फिर पिटाई की। इसके बाद से ग्रामीण और पुलिस एकदम आमने सामने हैं। बिगड़े हालात के मद्देनजर कई आला अधिकारी खूंटी में कैंप कर रहे हैं। आदिवासी विषयों के जानकार और कई संगठनों से जुड़े लक्ष्मणी नारायण मुंडा खूंटी के इस हालात पर कहते हैं,
दरअसल वहाँ जो आदिवासी लोग हैं पत्थलगड़ी अभियान के तहत जो आंदोलन चला रहे हैं अपने हक अधिकार जंगल जमीन बचाने के लिए, कारपोरेट घरानों के हमलों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, और इसी क्रम में अभी जो पुलिसिया दमन सरकारी तंत्र का दमन जो चल रहा है ये बिल्कुल काबिलियत में इसको स्वीकार करने लायक नहीं है।
उधर पत्थलगड़ी आंदोलन के एक अगुआ बलराम समद का कहना है कि वे लोग स्वशासन चाहते हैं और पांचवी अनुसूची के तहत ग्राम सभा की ताकत।
पूरे एकदम आदिवासियों का हित में पूरे भारत में देखने से लगता है कि पूरे भारत का संविधान इस क्षेत्र 244(1) के क्षेत्र आता है, पूर्ण रूप पांचवी अनुसूची क्षेत्र है, और पांचवी अनुसूची क्षेत्र का जो प्रावधान है जैसे भारत का संविधान 275 के तहत जो ट्राइबल का प्लान पैसा है वो ग्राम सभा में दिया नहीं जा रहा है, इसलिए ग्राम सभा के लोग आक्रोश है, दुख है, इसलिए हम खुद अपना स्वशासन व्यवस्था जो हम अपना ग्राम सभा से करने का निर्णय ले रहे हैं और काम कर रहे हैं।
इस बीच झारखंड के पलामू से एक नक्सली हिंसा की खबर सामने है। बूढ़ा पहाड़ पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मंगलवार की शाम नक्सलियों द्वारा किए गए एक विस्फोट में पुलिस के 6 जवान मारे गए थे, जबकि पुलिस ने एक नक्सली को आज मारने का दावा किया है। नीरज सिन्हा, BBC रांची।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय विषय। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि म्यांमार के बड़े फौजी अफसरों के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोपों में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों पर बाकायदा रणनीति बनाकर हमले करवाए। एमनेस्टी के अनुसार फौजियों ने गांवों पर हमलों के दौरान बलात्कार और हत्याएं की, इस कारण 7 लाख रोहिंग्या घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए। म्यांमार सेना ने लगातार कहा है कि उन्होंने जो किया वो विद्रोहियों के हमले का उत्तर था। सुनिए BBC संवाददाताओं की रिपोर्ट, सुना रही है मानसी दास।
एमनेस्टी के अनुसार सेना पर यौन हिंसा और लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर करने के साथ साथ रोहिंग्या मुसलमानों के बाजार और खेत चलाने के भी आरोप हैं, जिसके कारण पूरे के पूरे गांव को पलायन करना पड़ा। वी विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग नाम की एमनेस्टी की रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नस्लीय हिंसा के लिए सुनियोजित अभियान चलाया गया, जिसमें म्यांमार की सेना ने कानून के दायरे से बाहर जाकर हजारों रोहिंग्या लोगों की हत्या की। Amnesty International के Matthew Wells ने कहा,
The military is responsible for crimes against humanity and that those crimes go up to the senior levels of the command.
मानवता के खिलाफ अपराध करने की इन घटनाओं के लिए सेना जिम्मेदार है, और जो जिम्मेदार हैं उनमें आला अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। ये बड़े पैमाने पर सुनियोजित तरीके से चलाया गया अभियान था, जिसके तहत अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार से बांग्लादेश की तरफ भगाने की कोशिश की गई। ये थे Amnesty International के Matthew Wells के शब्द। एमनेस्टी के इस रिपोर्ट के बारे में अब तक म्यांमार ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन बीते कुछ वक्त की तरह उसका कहना है कि आतंक के खतरे के तहत सेना ने जवाबी कार्रवाई की थी, जो सही है। म्यांमार नस्लीय हिंसा के आरोपों से भी इनकार करता रहा है। बीते साल अगस्त में अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी यानी ARSA ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में पुलिस ठिकानों पर हमले किए थे। इसके बाद म्यांमार की सेना ने यह कहते हुए रोहिंग्या समुदाय के लोगों के खिलाफ अभियान चलाया कि वो विद्रोहियों को निशाना बना रहे हैं। सेना की जवाबी कार्रवाई के कारण रखाइन प्रांत से हजारों रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन हुआ और कई गांवों को जला दिया गया। एमनेस्टी की यह रिपोर्ट म्यांमार और बांग्लादेश में किए गए 400 साक्षात्कारों पर आधारित है। साथ ही इसके लिए सैटेलाइट से मिली तस्वीरें, फोरेंसिक जांच से मिले सबूत और सेना के गोपनीय दस्तावेजों का भी अध्ययन किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की क्राइसिस रिस्पांस डायरेक्टर तिराना हसन ने कहा,
The violence that was unleashed during 2017's clearance operations were unprecedented in both their scale and their brutality.
2017 में जो हिंसा हुई वो एक तरह से नस्लीय हिंसा थी जो बड़े पैमाने पर की गई थी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मानवता के खिलाफ किया गया अपराध है। हम यहाँ बलात्कार, लोगों को प्रताड़ित करने, लोगों को भूख से मरने के लिए बाध्य करने, उनके खिलाफ लैंडमाइंस का इस्तेमाल करने और उनके गांवों को जलाने की बात कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की तिराना हसन के शब्द। अब इस मामले में मुकदमा बने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों की मंजूरी आवश्यक है और चीन के रुख को लेकर मामला फंस सकता है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बर्मा के फौजी अफसरों पर मुकदमा चलाने की मांग की। ये जानकारी दे रही थी मानसी दास। और आइए एक बार फिर लौटते हैं भारत की ओर। भारतीय नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बीबीसी से एक इंटरव्यू में देश भर में एक साथ चुनाव करवाए जाने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि हाइपर डेमोक्रेसी यानी बार बार चुनाव करवाए जाने से चुनावों के प्रति उत्साह कम हो जाता है। हमारी सहयोगी किंजल पांड्या ने राजीव कुमार से बात की।
आपके नीति आयोग ने पिछले साल कहा था कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस, राज्य और सेंट्रल लेवल के इलेक्शन साथ में करना ज़्यादा उचित रहेगा कॉस्ट बचाने के लिए, और भी रीजंस दिए थे आपने। रिसेंटली खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी बात करते आ रहे हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इज देयर एनी लाइकलीनेस कि इस दिसंबर तक नेशनल इलेक्शंस होंगे?
ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। हमें इस पर कोई भी टिप्पणी करना चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि बड़ा ही संगीन राजनीतिक मसला है और इस पर कुछ भी इसको हल्के फुल्के तरीके से नहीं दिखा जा सकता। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मेरे खुद अपनी समझ में इनको करना बेहतर है, क्योंकि हर समय इलेक्शन होते रहना, उसमें क्या होता है कि इलेक्शन के तरफ, इलेक्शन के प्रति हमारी एक उदासीनता हो जाती है। मतलब हम लोग, आप देख रहे हैं ना, वोटर टर्नआउट कहीं घट के कभी कभी 32-33% हो जाता है, कि लोग कहते हैं तौबा फिर से इलेक्शन हो गया। मतलब म्यूनिसिपल इलेक्शन भी, राज्य इलेक्शन भी, सेंट्रल इलेक्शन भी, तो एक जो है वो एक तरह का डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम लोग इलेजिटिमाइज ना कर दें अपने बार बार इलेक्शन करके। क्योंकि अगर वोटर हट गया और वो वोट देने से कोताही कर गया, तो फिर तो ये हो जाएगा ना पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो हाइपर डेमोक्रेसी जो है, मतलब इन द सेंस कि हर समय हम एक इलेक्शन मोड में ही रहते हैं, उससे कहीं एक ज़्यादा गहरा नुकसान ना हो जाए, इसलिए साइमल्टेनियस इलेक्शन करना मेरे ख्याल में एक अच्छा आइडिया। मगर होगा कि नहीं होगा ये मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता।
एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। रिसेंटली पिछले 2 महीनों में पेट्रोल और डीजल के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हिस्टोरिक लेवल्स पे गए हैं। इस पर आपने भी काफ़ी बार बात की है। आपके हिसाब से एज अ लीडिंग गवर्नमेंट थिंक टैंक आप क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है आम आदमी को राहत देने के लिए?
देखिए, पहली बात तो ये कि पिछले 4 हफ्ते में पेट्रोल के दाम शायद 2.70 रुपये कम हो गए और डीजल के दाम मेरे ख्याल में 1.78 रुपये कम हो गए हैं, और वो शुक्रिया है, मतलब शुक्रिया बाहर के सर्कमस्टांसिस का कि ओपेक ने अपनी कुछ प्रोडक्शन वगैरह बढ़ा दिया, तो इसलिए कुछ तो राहत ऑलरेडी मिल चुकी है। मेरा जो अपना मानना था, जो मैंने कई बार कहा भी, कि जो हमारे राज्य हैं, राज्य सरकारें हैं, वो एड वैलोरम टैक्स लगाया करती हैं इस पर। मतलब ये कि जो भी उसका दाम हो क्रूड का, उस पर कुछ परसेंट से लगाती हैं, तो जैसे जैसे दाम बढ़ते हैं उनके टैक्स और बढ़ते जाते हैं और वो एक्साइज ड्यूटी के ऊपर वैट लगाते हैं। ना सिर्फ बढ़े हुए दाम, फिर एक्साइज ड्यूटी और उस पर फिर एक परसेंटेज टैक्स लगाते हैं जो कि 39% तक है, तो उनको एक विंडफॉल गेन मिल रहा है और वो विंडफॉल गेन मिल चुका, तो उससे राहत देने के लिए उनका ये बनता है, उनकी एक जिम्मेवारी बनती है कि उन एड वैलोरम टैक्सेस को वो कम करें, जिससे कि थोड़ी राहत हमारे आम आदमी को, आम कंज्यूमर को मिले। क्योंकि वो कम करने से उनका कोई वित्तीय घाटा बहुत बड़ा, मतलब ऑलरेडी उनको इतना फायदा हो चुका है कि उसको वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार से बात कर रही थी किंजल पांड्या। और अब समय है दुनिया जहान का। रचेप तैयब अर्दोआन एक बार फिर तुर्की में चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन गए हैं। मुस्तफा कमाल पाशा ने जिस मुस्लिम बहुल तुर्की में बहुत कड़ाई से धर्मनिरपेक्षता को लागू किया था, वहां अर्दोआन एक बार फिर से इस्लामिक तौर तरीके लागू करने में सफल हुए हैं। अर्दोआन के खिलाफ फौजी तख्ता पलट की कोशिश भी हुई, पर फिर भी वो सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने में सफल रहे। आज दुनिया जहान में चर्चा अर्दोआन के तुर्की की, प्रस्तुति संदीप सोनी।
दुनिया जहान।
तुर्की तर्जीनी PKK'dan FETÖ'ye kadar tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde
64 साल के रिचेप तैयब अर्दोआन को मुस्तफा कमाल अतातुर्क के बाद तुर्की के इतिहास में अब तक का दूसरा सबसे ताकतवर नेता माना जा रहा है। तुर्की गणराज्य के पहले राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा का चेहरा लोगों की आंखों में आज भी बसा हुआ है। कमाल पाशा के बाद तुर्की के लोगों के दिलो दिमाग में यदि किसी और ने जगह बनाई तो वो है रिचप तैयब अर्दोआन। तुर्की की राजधानी अंकारा में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार फुरकान हमीद इसकी वजह बताते हैं।
दोनों जो हैं वो बड़ी अपनी अथॉरिटी रखने के मालिक है। एर्दोगान भी बड़ी अथॉरिटी रखते हैं और कमाल पाशा भी अपनी अथॉरिटी रखते हैं। अथॉरिटी रखने की वजह से कमाल पाशा अब तक कामयाब रहे थे, इसलिए उन्होंने तवील अरसे तक जो है तुर्की पर हुकूमत की थी। और इसी तरह अब जो है रजब तैयब एर्दोगान डेमोक्रेसी है, लेकिन इसके बावजूद इनको अपनी जमात पर बिल्कुल गिरफ्त हासिल है। बड़े कामयाब तरीके से जो है वो हुकूमत चलाते चले, 16 साल से मुसलसल हुकूमत चलाते चले आ रहे हैं।
कमाल पाशा से अर्दोगान तक आते आते तुर्की के लोग दो हिस्सों में बटे नजर आते हैं। हालिया चुनाव के नतीजे इस मतभेद पर लोकतंत्र की मोहर भी लगाते हैं।
52% वोट जो है वो एर्दोगान को पड़े। 52% वोट पड़ने का मतलब ये है कि अवाम ने इनके हक में वोट दिए, जिनको पसंद करते हैं इससे जाहिर होता है। जबकि मुस्तफा कमाल पाशा जो है वो तुर्कों के दिलों में आज भी राज कर रहे हैं, आज भी उनकी उसी तरह मोहब्बत है जिस तरह पहले थी। कमाल पाशा बिल्कुल जिसे कहते हैं सेकुलर माइंड इंसान थे, वो किसी सूरत भी जो है वो मजहब को हुकूमत के मामलों में नहीं लेके आना चाहते थे। इसलिए उन्होंने शुरू ही में जो है वो सेकुलरिज्म इंट्रोड्यूस करवाया था, जबकि खिलाफत जो उन्होंने खत्म करने का मकसद यही था कि मजहब इस्लाम को रियासत के मामला से दूर रखा जाए। जबकि रजब तैयब एर्दोगान जो है इस मामले में कहते हैं कि मजहब के साथ साथ हुकूमत के मामला भी निपटाए जा सकते हैं, इसलिए मजहब की तरफ इनका ज्यादा रुझान है। ये दोनों में बड़ा वाज़े फर्क है।
तुर्की की मौजूदा तस्वीर बनाने के लिए इतिहास ने वर्तमान तक लंबा सफर तय किया। इस दौरान धरती का ये विशाल ऐतिहासिक भूभाग एक देश की शक्ल में सिमट कर रह गया। तुर्की के अतीत और वर्तमान पर पैनी नजर रखने वाले भारत के पूर्व राजनयिक तलमीज अहमद कहते हैं,
ये जो मॉडर्न तुर्की है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आई थी है तारीखी इतिहास में, उसके पहले ये था ऑटोमन एम्पायर। जो बाकी उस जमाने के एम्पायर थे जैसे रशियन एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, उसके साथ इनका मुकाबला था। और 1453 में ऑटोमन सुल्तान ने कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर उन्होंने हमला किया था और उसके ऊपर वो काबिज हो गए थे। अपने पीक पे ऑटोमन एम्पायर पूरे साउथ ईस्टर्न यूरोप को कंट्रोल करता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनके जो हार हुई ऑटोमन एम्पायर की जर्मनी के साथ और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ, तो मॉडर्न तुर्की उसमें से इजाद हुई। तुर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हारी थी, वहां बहुत ही बड़ी कोशिश हुई रशिया की, फ्रांस की और ब्रिटेन की कि उसके जो बड़े बड़े लैंड्स हैं उसके ऊपर ये लोग काबिज हो जाएं। कमाल अतातुर्क ने हर एक दुश्मन को हराया, हराने के बाद उन्होंने अपना मॉडर्न स्टेट कंसोलिडेट किया, तो इस वजह से उनको फादर ऑफ द नेशन कहते हैं।
कमाल पाशा को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने तुर्की पर मजहबी रंग नहीं चढ़ने दिया और अपने देश को समय के साथ आगे बढ़ाया। समर्थक कहते हैं कि अर्दोगान भी यही चाहते हैं, लेकिन आलोचक मानते हैं कि अर्दोगान ने कमाल पाशा की विरासत के साथ छेड़छाड़ की है।
कमाल अतातुर्क, उनकी कोशिश थी कि तुर्की को मॉडर्न किया जाए और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी मॉडर्निटी की उसको वेस्टर्नाइज किया जाए। एर्दोगान का रवैया जरा अलग है, वो भी मॉडर्निटी चाहते हैं लेकिन वो वेस्टर्नाइजेशन नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो तुर्की के कल्चरल रूट्स हैं, इस्लामी रूट्स हैं, उससे तुर्की को दूर नहीं होना चाहिए। कमाल अतातुर्क ने तो सेक्युलरिज्म अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी थी। तुर्की के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इट हैज टू बी अ सेक्युलर स्टेट। तुर्की के आर्म फोर्सेस ये गारंटी करेंगे कि तुर्की सेक्युलर स्टेट रहेगा। लेकिन हमने देखा है कि एर्दोगान जी ने फौज का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन किया था और उनके पास इतना ज्यादा पॉपुलर सपोर्ट है कि उन्होंने आर्म फोर्सेस को क्रश कर दिया। तो आर्म फोर्सेस का जो कू अटेम्प्ट था उस टाइम उन्होंने फौज को डायरेक्ट कॉन्फ्रंट किया और सारे जो उनके सीनियर अफसर थे उन सबको पकड़ के सख्त सजा दी है।
The details of what's happening tonight in Turkey are unclear. The pictures are unverified. But there's little doubt there's a big military presence on the streets of the country's two main cities. In a statement, Turkey's armed forces...
Ankara mein maujood varishth patrakar Furkan Hamid do saal pehle hui takhta palat ki is nakam koshish ki ek dusri kahani batate hain.
Kahani ye thi jise ye Turk log yakeen karte hain wo FETÖ jo hai inki tanzeem thi jisne CIA ke saath milkar Erdogan ka takhta ulajhne ki koshish ki thi kyunki America jo tha wo chahta tha ke kyunki Erdogan ko control nahi kar pa rahe unki Erdogan jo baatein nahi manta ab baatein na maane unka grift jo hai dheeli padne ki wo chahte the ki direct jo hai aisa banda hukumat mein laya jaye jo unki baatein maane jo unke jo kuch bhi kahe wo karta chala jaye lekin awam sadkon par nikal aaye aur is tarah awam ne is fauji baghawat ko jo hai wo nakam bana diya.
तख्ता पलट की नाकाम कोशिश से सबक लेने के बाद अर्दोगान ने साल 2017 में एक जनमत संग्रह के जरिए तुर्की में प्रधानमंत्री का पद खत्म कर दिया और प्रधानमंत्री की सारी शक्तियां राष्ट्रपति यानी अपने हाथों में ले ली. तो क्या अर्दोगान को चुनौती देने वाला तुर्की में अब कोई नहीं है? फुरकान हमीद कहते हैं
लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो सब कुछ इनके हाथ में आ गया सब कुछ. ऐसा हरगिज नहीं है बल्कि अब देखा जाए पार्लियामेंट में इनको वो अक्सरियत हासिल नहीं कानून साजी के लिए जो कि इनको पहले हासिल थी. पार्लियामेंट में इनको जो कुली अक्सरियत चाहिए थी 301 वोटों की वो नहीं मिली.
तुर्की मामलों के जानकार भारत के पूर्व राजनयिक तलमीज अहमद भी मानते हैं कि ऐसी कई चीजें हैं जो राष्ट्रपति अर्दोगान के खिलाफ जाती हैं.
उनके खिलाफ ये शिकायत है कि उन्होंने मीडिया पे ऊपर कंट्रोल रखा है और जो फ्रीडम ऑपोजिशन फोर्सेस के पास होनी चाहिए वो उनको नहीं मिल रही है और कुर्दियों के साथ जो उनको बातचीत करनी चाहिए और उनके खिलाफ काफी मजबूती से वो पेश आ रहे हैं.
इस पूरी चर्चा के बीच कुछ तथ्य ऐसे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. सैन्य गठबंधन नेटो में दूसरी सबसे बड़ी सेना तुर्की की है. तुर्की इस समय दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और मुस्लिम जगत में उसकी भूमिका को कम करके नहीं देखा जा सकता. अर्दोगान के ज्यादातर समर्थक रूढ़िवादी मुसलमान हैं और उनके दामन पर भी मजहबी रंग के छींटे हैं. ऐसे में मुस्तफा कमाल पाशा की विरासत तुर्की में कितनी महफूज रहेगी बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि अर्दोगान कब तक शिखर पर है.
संदीप सोनी की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें लिखिएगा. और अब बहुत कम समय है. ज्योतिका सिंह मेरे सामने स्टूडियो में बैठी हुई हैं खेल की खबरों के साथ. बताइए क्या क्या है आपके पास बहुत संक्षेप में.
जी, फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप एफ का आज मुकाबला है और साउथ कोरिया और जर्मनी आमने सामने खेल रही हैं और दूसरी तरफ मेक्सिको और स्वीडन भी आमने सामने हैं और दोनों टीम्स में मतलब चारों टीम्स में अभी तक कोई गोल नहीं हुआ है. दूसरी तरफ ग्रुप ई का मैच बहुत जल्द शुरू होगा. सर्बिया और ब्राज़ील होंगे आमने सामने और दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड और कोस्टारिका भी होंगे. शनिवार से राउंड 16 शुरू होगा जो कि एक नॉकआउट राउंड जिसे कहते हैं. दैट विल बिगिन.
अच्छा, तो नॉकआउट राउंड के अलावा यानी फुटबॉल के अलावा क्रिकेट पे भी अगर आपके पास एक कुछ कहने को वाक्य हो तो.
जी जी जी, आज आयरलैंड और इंडिया के बीच एक T20 मैच है. इस दौरे में दो T20 मैच शामिल हैं. इसके बाद एक लंबी सीरीज होगी इंग्लैंड और भारत के बीच.
बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिका सिंह. और कार्यक्रम समाप्त करने से पहले एक नज़र मुख्य समाचारों पर.
बीबीसी समाचार. भारत प्रशासित कश्मीर में भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच हिंदू श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ. अधिकारियों का कहना है कि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक चिप लगे वाहनों का प्रयोग किया जाएगा और उनकी निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं. रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए गठित संगठन OPCW ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत रासायनिक हमले के लिए किसी को दोषी ठहराया जा सकेगा. ब्रिटेन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को 82 वोट मिले जबकि विरोध में 24 वोट पड़े. कई दिनों से भूमध्य सागर में 200 से अधिक प्रवासियों को लेकर फंसे जहाज को माल्टा ने अपने बंदरगाह पर आने का प्रस्ताव दिया है. प्रधानमंत्री जोसेफ मस्केट ने कहा है कि वो मानवीय संकट को रोकने के लिए काम कर रहे थे. दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति सल्वा कीर और विद्रोही नेता रिएक माचार ने 5 साल के गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. बीबीसी समाचार.
फिलहाल दिन भर में इतना ही. आज स्टूडियो मैनेजर थे राजेश चौहान और कार्यक्रम को फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाने में मदद की सिंधु वासिनी ने. अब सभी साथियों की ओर से मैं राजेश जोशी आपसे अनुमति चाहता हूं। कल सुबह हमेशा की तरह 6:30 बजे हम एक बार फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभरात्रि।